समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर दैनिक कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। खेल जगत की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जयंती। परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। मुकेश, दिल्ली इज वोटिंग टुमारो।
बिल्कुल,
द पावर टू वोट फॉर योर कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एंड इंडियाज डेमोक्रेटिक अंडरपिनिंग्स आर बेस्ड ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। आवर लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय, फॉर एंड ऑफ द पीपल। We are fortunate to have the constitutional right to vote. We take it for granted. We shouldn't be doing this, but the constitution guarantees us the right to vote for whom we want and also to change our minds and change our government. Your vote has the potential to make a significant difference. Every vote counts. Though it seems like an endless sea of people who are there to vote, but each vote is equally important. The responsibility lies on every individual. So friends, Please come out of your homes tomorrow and do vote. What
बिल्कुल
do you say?
सभी को कल सवेरे से ही जाना चाहिए और अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए क्योंकि मतदान अत्यंत आवश्यक है।
Right, and now let's begin with the headlines making news at this hour.
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे।
Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government will not tolerate irregularities in agriculture sector.
दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी।
China announces retaliatory tariffs on American goods as United States levies take effect.
भारत वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3,76,40,000 डॉलर का योगदान देकर बकाया राशि का समय पर भुगतान करने वाले सम्मानित देशों की सूची में शामिल हुआ।
एंड इन टेनिस, इंडियाज अंकिता रैना एडवांस टू विमेन्स सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स ऑफ मुंबई ओपन। And Mukesh, as always, it's now time to take our it's the Dateline segment now, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about World Cancer Day and also International Day of Human Fraternity. Mukesh, we all know that World Cancer Day is observed annually on 4th of February, that is today, every year. And this global initiative aims to raise awareness about cancer prevention, detection and treatment. Cancer is the second leading cause of death worldwide, with millions of new cases and deaths each year. It doesn't just affect the individuals diagnosed, it also ripples through families, communities and entire nation. According to the World Health Organization, over 35 million new cancer cases are predicted by 2050, a 77% increase from the estimated 20 million cases in 2022. The rapidly growing global cancer burden reflects both aging and unhealthy population, as well as changes to people's exposure to risk factors, which are associated with socioeconomic development. And as we look towards the future, the predicted increase in cancer cases and deaths, especially in low and middle income countries, calls for an urgent response in cancer care, in cancer prevention, and also in research initiatives.
बिल्कुल अनुजा, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस पर एक विशेष विषय को अपनाया जाता है और ये विषय कैंसर देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वर्ष के विश्व कैंसर दिवस का विषय यूनाइटेड बाय यूनिक है। ये विषय प्रत्येक व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और उपचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये विषय कैंसर की देखभाल के लिए लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है, जिसमें व्यक्तियों और उनकी कहानियों को बातचीत के केंद्र में रखा जाता है। कैंसर विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करता है और प्रत्येक व्यक्ति का इस बारे में अनुभव अद्वितीय है तथा व्यक्तिगत देखभाल आवश्यक है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैंसर उपचार को तैयार करने के महत्व को उजागर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि देखभाल प्रभावी हो।
Yes, of course. The Union for International Cancer Care Control, which is UICC, in an official statement said that the campaign calls for a fundamental shift in cancer care and health systems worldwide towards a people-centered approach. By placing individuals and communities at the center of decisions, health systems become more effective and cancer care more compassionate, leading to higher survival rates and improved quality of life. Every person touched by cancer is unique in their experiences and requirements. The cancer community is united in its determination to see improvements in cancer prevention, early detection, treatment, and care for everyone, it said.
बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में जोखिम कारकों से बचकर और मौजूदा साक्ष्य आधारित रोकथाम रणनीतियों को लागू करके 30-50% तक कैंसर को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं जिनका उपयोग प्रभावी रोकथाम रणनीतियों के माध्यम से कैंसर की घटनाओं को कम करने के लिए किया जा सकता है। प्रमुख घटकों में शामिल हैं जीवन शैली में बदलाव, धूम्रपान से बचना, शराब का सेवन कम करना, फलों और सब्जियों के साथ स्वस्थ आहार लेना और नियमित शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना।
Right, Mukesh, yes, you were saying something.
जी बिल्कुल, और इसके अलावा संतुलित और पौष्टिक आहार भी इसमें शामिल करने की आवश्यकता है और आप जिस प्रकार आहार लेते हैं उसका आपके समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान रखने और स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने की सलाह दी जाती है। आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आपका भोजन संतुलित और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाल, फलियां और प्रोटीन जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने पर अधिक ध्यान दें। प्रसंस्कृत डिब्बाबंद और जंक फूड खाने से बचें। इन खाद्य पदार्थों में चीनी, सोडियम और परिरक्षकों की मात्रा अत्यधिक होती है जो कैंसर के इलाज के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। स्टोर से खरीदे गए या खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के बजाय घर पर पकाए गए खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनें। आप अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं।
Yes, Mukesh, I totally agree that educating and empowering yourselves by knowing more about a particular disease includes how to prevent it, the importance of early detection and advancements in its treatment also. And by empowering individuals, we can help them make informed decisions about their health and well-being. You were talking about being physically active. Yes, it provides a range of health benefits such as boosting energy levels, improving your mood, and reducing the risk of recurrence. Always consult your doctor before starting your workout routine. And of course, if we talk about a doctor, the professor of oncology in AIIMS, New Delhi, we talked to him, Dr. Ray. He said that cancer is a curable disease. People need to monitor their health regularly and follow a healthy routine as precautionary steps to protect themselves from cancer.
Cancer is a preventable disease. 60-80% cancer could be prevented because cancer is usually because of chronic irritation in our body and mind. Tobacco related product responsible for 40-50% and our lifestyle, our bad lifestyle I can say responsible for 30% of the cancer. And one most important thing, cancer is a preventable disease. We can prevent the cancer and cancer is also curable if it is detected early.
And the next topic we are going to discuss on is the International Day of Human Fraternity. Every year, 4th of February is also celebrated as the International Day of Human Fraternity. It aims to take steps towards unifying people across the globe as a human community, irrespective of religion and culture. It emphasizes the importance of unity amidst rapidly changing political, economic, and ethno-nationalistic conditions across the world. It was in the year 2020, the United Nations General Assembly passed a resolution of designating February 4th as the International Day of Human Fraternity. The day was instituted to celebrate the historic document, Human Fraternity for World Peace and Living Together, which was being signed by the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyab, and also Pope Francis in the year 2019.
बिल्कुल, दस्तावेज विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच प्रेम, आपसी सम्मान और सहयोग के मूल्यों को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां हर कोई शांति और सम्मान से रह सके। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2020 के प्रस्ताव में कहा है कि ये उन कृत्यों पर गहरी चिंता है जो धार्मिक घृणा की वकालत करते हैं और इस तरह सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना को कमजोर करते हैं। बहरहाल इस दिन की अंतर्निहित विचारधारा की मूल सिद्धांत 1999 में अस्तित्व में आए थे और शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए सार्वभौमिक जनादेश है जो भविष्य की पीढ़ियों सहित पूरी मानवता को लाभ पहुंचाता है।
Yes, fraternity refers to a sense of brothers and sisterhood among the country's citizens and a sense of belonging. If we remember that our preamble also refers to the word fraternity, Mukesh. The fraternity must ensure two things, the individual's dignity and also the nation's unity and integrity. It is the fuel that allows common people to produce uncommon results. The United Nations emphasizes the value of educating people about many cultures, faiths and beliefs, as well as the role that education plays in fostering tolerance through the International Day of Human Fraternity. The International Day of Human Fraternity recognizes that human brotherhood is fostered by the diversity of religions and beliefs, tolerance, pluralistic traditions, and also respect for one another.
आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और अनुजा कुमार के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले पूर्वोत्तर की ओर चलें।
राइट मुकेश
जी। हाँ, पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजट में 10,440 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। इससे जहां रेल यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा में मदद मिलेगी, वहीं व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। तो सुनते हैं परितोष दीक्षित को शिलांग से।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ष 2025-26 के लिए पूर्वोत्तर में रेलवे के ढांचागत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 10,440 करोड़ रुपए के आवंटन की जानकारी दी। पूर्वोत्तर के मीडिया कर्मियों के साथ बीते कल वर्चुअल माध्यम से बातचीत में केंद्रीय रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर में रेलवे विकास के लिए इस वृद्धि को ऐतिहासिक बताया। श्री वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त 1000 नए फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण से देशभर में सुरक्षा और बढ़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने चुनौतीपूर्ण भूभाग के बावजूद पूर्वोत्तर में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति को संतोषजनक बताया। श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक 1,824 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में 478 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1,189 रूट किलोमीटर पर कवच सुरक्षा प्रणालियों का क्रियान्वयन चल रहा है। वर्चुअल संवाद के दौरान मौजूद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव और अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस क्षेत्र के 92 स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। NFR क्षेत्राधिकार के तहत सभी पटरियों का विद्युतीकरण दिसम्बर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और मिजोरम में भैरबी सैरांग परियोजना जुलाई 2025 तक पूरी होने वाली है। परिक्रमा के लिए परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग।
एंड नाउ न्यूज फ्रॉम महाकुंभ 2025 व्हिच इज बीइंग हेल्ड इन प्रयागराज। Mukesh, the ongoing largest religious gathering at Kumbh Mela is going on and foreign visitors are also attracted, not only Indians. And the festival is inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity.
Bilkul.
King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyal Wangchuk, took a holy dip at the Triveni Sangam at Mahakumbh Mela today. He was accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Our correspondent reports that the ongoing spiritual event is witnessing an overwhelming show of faith with crores of devotees from India and abroad taking a holy bath at the Triveni Sangam. Let's hear more from our correspondent.
The prominent personalities from various fields are taking holy dip at the Triveni Sangam, the confluence of Ganga, Jamuna and Saraswati River. The King of Bhutan reached Prayagraj this morning and performed aarti at Triveni Sangam along with Chief Minister Yogi Adityanath. He took a boat ride at Sangam Ghat and fed Siberian birds. The King also visited Akshayavat and Bade Hanuman Temple in Prayagraj. He also explored the depth of Mahakumbh through modern technology at the Digital Mahakumbh Experience Centre. The visit of the King of Bhutan will further strengthen the India-Bhutan friendship and cultural relations. The Mahakumbh Mela commenced on 13th January and over 38 crore devotees have taken holy dip in the Triveni Sangam so far. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashvani News, Prayagraj.
और अनुजा अब श्रोताओं को ले चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर. जी हां, नवोन्मेष और संशोधन से हर मुश्किल का समाधान किया जा सकता है. नागपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए उपयोगी फोल्डिंग हेलमेट बनाया है. आइए सुनते हैं एक रोचक रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर से.
राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर संजय ढोबरे एवं एमएससी छात्रा अदिति देशमुख ने अभिनव अनुसंधान किया है जो दोनों हेलमेट को बाइक में रखने की अनुमति देता है. इन दोनों ने फोल्डिंग हेलमेट तकनीक विकसित की है. ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसके सभी कार्य और मजबूती सामान्य हेलमेट की तरह रहे. इस अनुसंधान के लिए डॉक्टर संजय ढोबरे और अदिति देशमुख को अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ है. विश्वविद्यालय के सभी विभाग अध्यक्ष एवं शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने डॉक्टर संजय ढोबले और अदिति देशमुख को बधाई दी है. लोगों की सुरक्षा और प्राथमिकता को देखते हुए बाइक पर हेलमेट रखने का भी प्रावधान है. हालांकि अगर दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया जाता है तो बड़ा सवाल उठता है, जबकि वाहन खड़ा हो तो हेलमेट कहां रखा जाए. अब इस समस्या का हल जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ हेमांगी कुलकर्णी.
और अनुजा, अब आप बताएं कि व्यापार जगत से आपके पास क्या खबर है.
Right, benchmark domestic equity indices today surged over 1.5% amid broad-based buying and positive global cues after the US paused planned tariffs on Canada and Mexico. The 30 share index at Bombay Stock Exchange Sensex soared 1,397 points or 1.81% to close at 78,584. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 rose 378 points or 1.62% to settle at 23,739. And in the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 83,180 rupees per 10 grams, while silver is trading up at 94,590 per kilogram when reports last came in. Mukesh.
और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की. और खेल जगत में भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी आज WTT सिंगापुर स्मैश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. बाद में महिला डबल्स में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी का सामना थाईलैंड की सोथासिनी सोवेबेट्टाबुटू और ओरवान परांगनांग से होगा. इससे पहले आज सवेरे यशस्विनी घोरपड़े ने ऑस्ट्रेलिया की मिनह्यूंग जी के साथ मिलकर महिला डबल्स में स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रॉम और क्रिस्टीना कालबर्ग के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की. हालांकि सिंगल्स वर्ग में कुछ भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक कठिन प्रदर्शन था, क्योंकि श्रीजा अकुला महिला सिंगल्स में चीन की झियो जिया से 3-2 से हार गईं और इसके बाद मनिका बत्रा भी रोमानिया की एलिजाबेथ समारा से 1-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. इस बीच यशस्विनी घोरपड़े को शुरुआती दौर में जापान की मेवा हरिमोतो के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा.
यस, एंड इन मुंबई ओपन टेनिस इंडियाज अंकिता रैना हैज एडवांस्ड टू द विमेन्स सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स टुडे. शी रजिस्टर्ड अ विन ओवर कंपैट्रियट वैष्णवी आडकर 6-2, 6-2 इन द राउंड ऑफ 32. अंकिता विल नाउ फेस रेबेका मारिनो ऑफ कैनेडा इन द राउंड ऑफ 16 टुमारो. द मुंबई ओपन रिटर्निंग आफ्टर 6 इयर्स हैज सीन पास्ट चैंपियंस इंक्लूडिंग 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर अरिंका सबालिंका, हु क्लेम्ड द 2017 टाइटल एज अ टीनेजर, थाईलैंड्स लुक्सिका खुमखुम, द 2018 चैंपियन एंड लातवियाज दारिया सेमेत्सेजादिया, हु वन इन 2024. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Exactly 100 years ago, on the 4th of February 1922, the Chauri Chaura incident took place. Gandhiji had launched the non-cooperation movement on the 1st of August 1920. As the movement gathered momentum over the next year and a half, large number of volunteers became active across the country. In January 1922, the Gorakhpur Congress Committee and the Khilafat Committee urged peasants to lead the picketing of shops selling foreign items. The police cracked down on volunteers and severely beat up some peasants. This incident infuriated the local people. On February the 4th, people assembled in the town of Chauri Chaura and proceeded to picket the Mundera Bazaar, which was close to the Chauri Chaura police station. When the police opened up fire, a volcano of anger erupted amongst the protesters.
Protesters came down heavily on the police. The crowd set the police station on fire. 23 police personnel died and a lot of police property was destroyed. Mahatma Gandhi was shocked by the incident and he decided to halt the non-cooperation movement, which was finally stopped on 12 February 1922.
More than 200 protesters were put up on trial by the British administration for the Chauri Chaura incident and six of them died in police custody. After an 8-month-long trial, 172 people were sentenced to death. This verdict met severe backlash, after which the Allahabad High Court revised its judgment and sentenced 19 to death, 110 to life imprisonment, and the remaining received long jail terms. Today, a Shaheed Smarak stands at the site in honor of those martyrs. Salutes the brave sons of the soil.
We also remember the nationalist leader M.A. Iyengar, Madhubushi Ananthasayanam Iyengar, who was born on 4th February 1891 at Tiruchanur near the spiritual town of Tirupati. Iyengar was drawn into the freedom movement at a very early age. Within his home state, he was one of the leading figures of the Indian National Congress. Responding to Gandhiji's call for non-cooperation, Iyengar suspended his legal practice during 1921 and 22.
Between 1940 and 1944, Iyengar was imprisoned for nearly 3 years. First, for taking part in the individual Satyagraha campaign, and later in the Quit India movement.
When G.V. Mavlankar was chosen as the Speaker of the Constituent Assembly for legislative functions, Iyengar was chosen to be its Deputy Speaker. Thus, when the first Lok Sabha was constituted in 1952, Iyengar was the unanimous choice to be its Deputy Speaker. After the sudden demise of G.V. Mavlankar, Iyengar was elected unanimously to preside over the Lok Sabha on 8th of March 1956.
During his brief tenure as the Speaker of the first Lok Sabha, Iyengar proved himself a worthy inheritor of the high traditions in the parliamentary life. Iyengar was thus the unanimous choice of the House to be its Speaker in the second and third Lok Sabha also. In 1962, he resigned from the post of Speaker to serve as the Governor of Bihar.
Iyengar also remained active socially in the field of education. Iyengar breathed his last on 19th March 1978.
And now we come to the last segment of paying tributes to some great personalities associated with today's date of 4th of February. And we begin with Satyendranath Bose, who was an Indian physicist specializing in mathematical physics. He is best known for his work on quantum mechanics in the early 1920s, providing the foundation for Bose-Einstein statistics and the theory of the Bose-Einstein condensate. He is honored as the namesake of the boson. He was awarded the Padma Vibhushan in 1954 by the Government of India. Apart from physics, he did research in biotechnology and also literature, Bengali and English. He made studies in chemistry, geology, zoology, anthropology, engineering and other sciences. Being a Bengali, he devoted significant time to promoting Bengali as a teaching language, translating scientific papers into it and promoting the development of the region. He became an advisor to the then newly formed Council of Scientific and Industrial Research. He was the president of the Indian Physical Society and the National Institute of Science as well. He was also nominated later as member of the Rajya Sabha.
और आज पुण्यतिथि है भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक भगवान दादा की। भगवान दादा अपनी प्रसिद्ध सामाजिक और हास्य फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले भगवान दादा ऐसे अलबेले सितारे थे जिससे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित और प्रेरित हुए हैं। भगवान दादा का वास्तविक नाम भगवान आभाजी पालो था। भगवान दादा का जीवन और फिल्मी करियर जबरदस्त उतार चढ़ाव से भरा रहा और लेकिन वे अपने सिनेमा के इतिहास में खास जगह रखते हैं और उनकी मुख्य फिल्मों की अगर हम बात करें तो उनमें अलबेला तुमने बताया है, इसके अलावा मतलबी, लालच, मतवाले, बदलाव जैसी कई फिल्में थी, लेकिन हम अपने श्रोताओं को अलबेला फिल्म का ये डायलॉग जरूर सुनवाना चाहेंगे।
अब सुनिए कॉमेडी, तुम आदमी हो या गधे, चने दोनों खाते हैं लेकिन घास सिर्फ गधा खाता है। कमाई खत्म। अब सुनिए ड्रामा, ये मेरी तलवार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। आप अपना पता लिखवा दीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पता? अरे साहब, मेरा कहीं पता होता तो फिर आर्टिस्ट क्यों होता? खैर, अगर मेरा कहीं ठहरने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर एक बार आकर जरूर आपको तकलीफ दूंगा।
हाँ हाँ हाँ, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, मैं आपका ये इंतजार करूंगा।
शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्ते।
And next personality we pay tribute to is one who was the youngest artist to be awarded the Sangeet Peeth Samman. She won the National Film Awards for Best Female Playback Singer 3 times and also has won the State Government Awards from the states of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat. Yes, I'm talking about Vani Jayaram. She has her death anniversary today. And in 2012, she was honored with the Filmfare Lifetime Achievement Award in the South for her achievements in South Indian film music. She was well versed with in various forms of music including Carnatic, Hindustani, Tumri, Ghazal and Bhajan. And apart from singing, she was also a songwriter, a composer and a painter. Of course, fondly remembered but as the Meera of modern India, Vani's career started in 1971 and spanned over 5 decades. We have a beautiful song in her voice from the movie Guddi.
और अब हम याद कर रहे हैं किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को। आज उनकी जयंती है। उन्होंने 19 साल की उम्र से गायन शुरू किया था और वे 7 दशक तक शास्त्रीय गायन करते रहे। पंडित भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया भारतीय संगीत के क्षेत्र में। इससे पहले एमएस सुबालक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया चुका है और उनकी योग्यता का आधार उनकी महान संगीत साधना है। देश विदेश में लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में उनकी गिनती होती है, तो क्यों ना उनका गाया हुआ ये किए सुन लेते हैं।
Is the birth anniversary of an Indian dancer, a master of the classical dance from Kathak and a leading exponent of the Kalka Bindadin Gharana of Lucknow, Pandit Birju Maharaj, who has won several honours and awards including the coveted Padma Vibhushan. He has also been awarded with the Kalidas Samman by the Government of Madhya Pradesh, Soviet Land Nehru Award, Sangam Kala Award, and he was also the recipient of the Lata Mangeshkar Puraskar. So we have a rendition in his voice. For about his perfect rhythm and expressive abhinay, Birju Maharaj developed a style that blends elements belonging to both his father and his various uncles who were also in this field.
तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।